जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदान जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदान जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Radha Vrindavan Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath. Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jagannath Swami, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतस्वी श्रीमत डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतस्वी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कान पुणे NBCC की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। राधा राधा कुंज बिहारी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री जगन्नाथ बलराम बलदेव सुभद्रा महारानी रथयात्रा महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग हरे कृष्ण। तो आज सुबह की कक्षा में जगन्नाथ अष्टकम की पहला दोनों श्लोक हम चर्चा किए थे और इस कक्षा में अगले और तीन श्लोक चर्चा होने वाला है, तीसरे चौथा और पंचम श्लोक, और काल सुबह फिर 6, 7, 8 से ओ श्लोक निकालो, तीसरा नंबर श्लोक जगन्नाथ अष्टकम था, तीसरे श्लोक महाम्बोधे स्थिरे कन करुचिरे, महाम्बोधे स्थिरे कन करुचिरे, नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सुभद्रा मध्यस्थ महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांतः सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो श्लोक जगन्नाथ अष्टकम की तीसरे श्लोक है। यहां पर कहा, आप पहले हमें दोनों श्लोक में देखे कि जगन्नाथ जी कौन है, वर्णन हुआ था कि वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है जो सदा वृंदावन में ही निवास करने वाले, जो वृंदावन से कभी भी परित्याग करके अन्य स्थान नहीं जाते, जो सदा वृंदावन में निवास करने वाले हैं, सदा श्रीमद वृंदावन बसति ला परिचय, जो सदा श्रीमद वृंदावन धाम में ही निवास करके ही अपनी लीलाओं को प्रकट करने वाले थे। लेकिन आज के तीसरे श्लोक में हम देख रहे हैं कि ये कह रहे कि महाम्बोधे स्थिरे, वो जगन्नाथ कहाँ रहते हैं, महाम्बोधे स्थिरे महासमुद्र के किनारे, महासमुद्र, ये कहाँ पर महासमुद्र, पुरी धाम में जो समुद्र है, तो वहां पर यहाँ पर इसको कहते कि महासमुद्र, महाम्बोधि, अम्बोधि माने समुद्र, महासमुद्र की तीरे किनारे पर कनक रुचिरे स्वर्ण सिंहासन में, वो रुचिरे नील शिखरे, नील पर्वत के ऊपर जो जगन्नाथ जी जो बैठी हुई जो मंदिर है, इसको वो एक पहाड़ के छोटा सा पहाड़ है, अभी तो वो सब मैंने उसके ऊपर मंदिर बैठ गया, मंदिर बन गया और सब नील मैंने वहाँ पर जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन इसको प्रकृत में कहते कि नील पर्वत है, नीलाचल क्षेत्र कहते, नील अचल, अचल का अर्थात पर्वत जिस चलता नहीं है, अचल, तो नीलाचल कहते इसको, नील अचल अर्थात, तो पहाड़ कैसे हैं, नील पर्वत, इसलिए यहाँ पर कहते हैं नील शिखर है। और ये पर्वत में जो कि दक्षिण समुद्र के किनारे बा महासमुद्र के किनारे पर, और उस पर्वत के ऊपर रत्न वेदी पर बा कनक उज्ज्वल जो कि स्वर्ण सिंहासन के पर बैठे हुए कौन, जगन्नाथ अकेले नहीं बैठे हुए। कहते कि बसन प्रसादांत सहज बल भद्रेन बलिना, बसन बसे हुए उसी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वो बड़े प्रसाद माने साधारण ऐसे सिंहासन कई पर्वत का पर खोले सिंहासन नहीं बनाया हुआ प्रसाद है, विशाल मंदिर अंदर में प्रसादांत सहज प्रसाद का अभ्यंतर में अपने बलिष्ठ सहज और बलदेव के साथ जो बैठे हुए रत्न वेदी पर बैठे हुए, अकेले नहीं बैठे वा खोले ऐसे ही खोले जगह पर ऐसे सिंहासन नहीं बनाया गया पहाड़ के ऊपर ऐसे सिंहासन बैठा दे और ऊपर जगन्नाथ बैठे, ऐसा नहीं। विशाल प्रसाद विशाल महान जो मंदिर है जिसको आज हम जिसको बड़े बड़ा मंदिर कहते हैं, बड़ा देवल कहते हैं, अर्थात सबसे बड़ा मंदिर व प्रसाद। यहाँ पर कहते कि प्रसाद, प्रसाद माने बहुत बड़े बहुत बड़े जो विशाल मंदिर की अंतकरण में जो बैठे हुए हैं, अकेले नहीं है, रत्न वेदी पर अपने बड़े भाई सहज बलभद्रेण जो सबसे बलवान है बलदेव के साथ और सुभद्रा मध्यस्थ, सुभद्रा को बीच में रखते हुए बड़े भाई बलराम को दक्षिण भाग से रखते हुए जो समस्त देवताओं के द्वारा सेवित है, सकल सुर सेवा वसरतो, जो समस्त देवताओं के द्वारा पूजा प्राप्त करने वाले बाद समस्त देवताओं के द्वारा जो वंदनीय है बा जो समस्त देवताओं के भी अपने सेवा के अधिकार प्रदान किए हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन के पथगामी हो, वह जहाँ भी मैं देखूं, जहाँ पर भी मेरे दृष्टि पड़े वहाँ पर मैं इनको ही दर्शन करूं, किनको, जगन्नाथ जी को। जैसे हम कहते कि स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। यदि हम अपने इष्ट जगन्नाथ को मानते हैं तो हम कहीं भी मैं देखता हूँ मेरे नयन के सामने आप कहीं जैसे दर्शन हो, मेरे नयन के पथगामी आप ही हो है जगन्नाथ। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले जब कहा गया कि जगन्नाथ जी को स्वयं कृष्ण है, कि ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रज छोड़ के वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि जगन्नाथ जी कहाँ बैठे हुए हैं, श्री नीलाचल क्षेत्र पुरी धाम में, नील समुद्र बा दक्षिण समुद्र बा जिसको महासागर कहते हैं इसके किनारे नील पर्वत के ऊपर जो विशाल प्रसाद बा विशाल मंदिर के अंदर रत्न वेदी पर अपने भाई और बहन के साथ बैठे हुए। पहले हम वर्णन किए जगन्नाथ जी के स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं जगन्नाथ जी की ऐसे स्वरूप में बैठे हुए हैं जिनके हाथ आधा है, पैर है नहीं है, आँख बड़े बड़े हैं, और वो अकेले भी नहीं है, जहाँ पर सुभद्रा भी है, उनके बहन है, बड़े भाई बलराम भी है। तो फिर ये तो लगता नहीं कि वृंदावन की स्थिति है, वृंदावन में ऐसे नहीं रहते, बड़ा सुभद्रा का कुछ लेना देना नहीं है, कहाँ अपने बलराम और थे वृंदावन में कृष्ण के साथ, लेकिन सुभद्रा नहीं थी। सुभद्रा कहाँ पर, मथुरा और द्वारका लीला में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ पर सुभद्रा भी बैठी हुई है, इसका अर्थ हमें क्या, जगन्नाथ जी को हम किस रूप में देख रहे हैं, द्वारका वासी के रूप में देख रहे हैं वा उनके ऐश्वर्य लीला को दर्शन कर रहे हैं, इसी रूप में क्यों हम देखना चाहते जगन्नाथ जी को। भाई बलराम और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी को रत्न वेदी पर सिंहासन पर बैठे हुए क्यों देखना चाहते, इसी रूप में देखना कि क्या आवश्यकता है, इसी रूप में जगन्नाथ क्यों फिर आपने को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये जो रूप है जगन्नाथ जी के, ये रूप कोई ऐश्वर्य के रूप नहीं है, ये अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं कर रहे, प्रकृति में ये उनके महाभाव स्वरूप है। इस रूप में इन्होंने पूजा प्राप्त करने के लिए अपने महान भक्त नारद जी को वरदान दिए थे, कि नारद जी ने इनसे वरदान मांगे थे कि इसी रूप में दर्शन करना चाहते थे नारद जी, कि इसी रूप में कहीं ना कहीं उनकी पूजा प्रतिष्ठित हो, और ये इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारद जी की इच्छा को भगवान ने इसी रूप में वहाँ पूजा प्राप्त करते हैं। इस कहानी आप जानते हैं कि जब कृष्ण बलराम द्वारका में रहते थे, द्वारकाधीश के रूप में कृष्ण रहते थे, और वहाँ पर अपने 16108 रानियों के साथ में अपने वैभव लीला व ऐश्वर्य लीलाओं को प्रकट करते थे द्वारकापुरी में। नारद जी ने स्वयं देखे, जितनी रानी इतनी उनके महल है, 16108 रानियाँ अपने अपने महल में रहते थे, और कृष्ण स्वयं को इतनी रूप में विभाजित करके ही प्रत्येक रानियों के साथ में रहते थे। तो लेकिन रानियों की अनुभूति था कि कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में प्रत्येक रानी के साथ रहने पर भी वो प्रसन्न नहीं थे। रुक्मणी सत्यभामा आदि रानियाँ सोचते थे कि प्रत्येक रात्रि में जगन कृष्ण ने प्रलाप करते थे, रात्रि के अर्धरात्रि में कभी कभी राधे राधे, कभी सुबल श्रीराम, ऐसी अपने सखाओं को, कभी कभी विशेष रूप में गोपियों को पुकारते थे, कभी कभी किसी रानी बा रुक्मणी को आलिंगन करते हुए क्या कहते थे, राधे राधे। तो ये रानियों को बड़ा आश्चर्यचकित होते थे कि राधा कौन है, ये राधा कौन है, यीशु किसके नाम ले रहे हैं, हम दिन रात इनकी इतनी सेवा करते हैं लेकिन हमारे सेवा में ये प्रसन्न नहीं है, ये अन्य किसी किसी कोई प्रेमिका इनकी है जिसको ये स्मरण कर रहे हैं, जिनके नाम ले रहे हैं। इसलिए रहस्य को जानने के लिए उन्होंने माता रोहिणी के पास में गए थे। बड़ा कहानी आप लोग सब जानते प्राय। और माता रोहिणी की को जो अनुनय विनय किए कि इसकी रहस्य को जानने के लिए, और विशाल प्रकोष्ठ को चुना गया जिसमें एक साथ में ये सारे रानी बैठ सकते हैं, 16108 रानियाँ बैठ सकते हैं। और उसमें माता रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को कह सुनाएगी, वो कही थी मैं सुनाऊंगी लेकिन एक शर्त पर कि कृष्ण बलराम जैसे कथा के बीच में प्रवेश न कर जाए। कि रोहिणी माता ने सतर्क की कि देखो जब भी मैं ब्रज की कथाओं को ब्रज की लीलाओं को वर्णन करूंगा या करूंगी तो उस समय अवश्य ये कृष्ण बलराम कहीं भी रहेंगे ये आ जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कोई सांप के मंत्र को गुणी जो गुणी है तो वो जानता था मंत्र, यदि वो अपने वाद्य बजाते हुए कुछ गीत गाता है उन मंत्रों को पढ़ता है, सांप कहीं भी रहता रह नहीं पाता, बाहर निकाले आकर नृत्य करता है। इसी प्रकार जब हम ब्रज कथाओं को मैं वर्णन करूंगी ये कृष्ण बलराम कहीं भी होंगे आ जाएंगे, इसलिए ये यदि प्रकोष्ठ में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर मेरी लीला बोलना समाप्त हो जाएगी, इसलिए इनको रुकना पड़ेगा। कौन रुकेगा, रानियां तो सब सुनना चाहते थे। इसके साथ साथ रानी भी कहने लगी कि देखो हमारा पतिदेव है, हम इनको कैसे रुकेंगे, ये हम अपराधी बनेंगे, हमें ऐसे नहीं करना चाहते। तो उनके छोटे बहन को रख दिया जाए, किसको, सुभद्रा जी को अनुनय विनय करके ही रुक्मणी सत्यभामा आदि सब रानियां पटा दिए, और उनको कहे कि आप ही दर्जे पर खड़े रहो, दर्जा तो बंद रहेगा लेकिन फिर भी ये तो महाबल बलवान है कृष्ण बलराम, तो एक ही धक्का से आ जाएंगे, अंदर घुस के आ जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो छोटे बहन जिनको बड़े प्यार करते हैं, जो प्यारी बहन है उनकी, उसी को ही रख दिया जाए, गेट कीपर खड़े रहेगी और अपने दोनों भाई को रोक लेगी। तो इसलिए सुभद्रा जी दर्जे पर खड़ी रही और माता रोहिणी ने व्यासासन में बैठकर अपने कथा प्रारंभ की। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर प्राय जन्म लीलाओं को लेकर किस प्रकार उन्होंने मथुरा से फिर वसुदेव ने इनको लाकर नंद भवन में छोड़े, और उनके बचपन की लीलाएं पुतना बद्ध आदि सारी लीलाओं को जब वर्णन करते करते गोचारण लीला रास लीला जब प्रारंभ हुई तो कृष्ण बलराम भागते भागते आए और अपने छोटे बहन सुभद्रा को देखे दर्जे पर हैं। तो उनको देखकर दोनों फिर बड़े दोनों भाई देखे कि क्या कर सकते, उन्हें बहन ही दोनों हाथ को ऐसे ही पसारते हुए सामने दोनों हाथ को पसारते तो रुके दोनों भाई को, रुकावट की कहीं नहीं अंदर नहीं जाना,
वो बोलते नहीं थे। माता रोहिणी के प्रवचन को बड़े तल्लीन होकर श्रवण कर रही थी। कौन? सुभद्रा जी सुन रही थी, इसलिए बात नहीं कर रही थी, खड़े हाथ ऐसे ही देखा कर। दोनों भाई बाध्य होकर दोनों साइड में खड़े हो गए, इसलिए दोनों भाई के वस्त्र से ही इसका हाथ छुपा हुई है। किसके? सुभद्रा के हाथ छुप गए। लेकिन दोनों, ये भी कृष्ण बलराम, बड़े तल्लीन होकर सुन रहे थे ब्रज की कथाओं को। तो अपने ही जन्म कर्म और अद्भुत लीलाओं को श्रवण करके उनकी ये महाभाव रूप प्रकट हुई। उनके आंख बड़े बड़े होकर बड़े बड़े उद्विग्नता के साथ श्रवण कर रहे थे और उनके हस्तपद आदि संकुचित होकर आस्ते आस्ते शरीर के अंदर में प्रवेश करने लगा। तो इसी रूप में जो ये प्रकट हुए थे, जब मैंने बड़े तल्लीन होकर सुन रहे थे तीनों, दोनों भाई और बहन सुभद्रा, तो उसी समय में इनकी जो ये महाभाव रूप प्रकट हुई थी। ये रूप को देख उसी समय नारद जी ने भगवान को मिलने के लिए आ रहे थे और आकाश मार्ग से उतर कर देखे कि ये कौन सा रूप है, ऐसे रूप तो मैं कहीं कभी दर्शन नहीं किया। नारद जी ने तुरंत ही स्तुति करने प्रारंभ कर दिए। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। नारद जी की उपस्थिति को जब भगवान को पता लगा, कृष्ण बलराम को रोने उन्होंने प्रकृतिस्थ हो गए और उन्होंने देखे कि नारद मुनि सामने हैं। तुरंत अपने वो रूप को, महाभाव रूप को छुपाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहे कि देख लिया प्रभु, देख लिया ऑलरेडी और छुपाओगे क्या। लेकिन मेरा एक प्रार्थना है, ये जो अद्भुत रूप में दर्शन किया आपके महाभाव स्वरूप को, ये आपके महावदान्य स्वरूप है। इस रूप में तो आप बड़े दयालु हैं, आप अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसी रूप में कहीं ना कहीं आपकी पूजा हो। इस धरा पर, धरती पर, पृथ्वी पर ये पतित पावन स्वरूप में आप कहीं ना कहीं पूजा प्राप्त करिए, महाभाव स्वरूप में आपकी पूजा कहीं ना कहीं हो। इसलिए भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त नारद जी की अनुनय विनय को रक्षा करने के लिए, उनके उन्हीं को प्रतिश्रुति दिए थे उसी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने इसी रूप में प्रकट है। कहाँ पर? श्री जगन्नाथपुरी धाम में, जो मुख्य मंदिर जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में, नीलाचल क्षेत्र में रत्न वेदी पर अपने भाई बलराम सहज बलभद्रेन बलिना, अपने बलवान भाई बलभद्र और अपने छोटे भाई बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हुए हैं। इसलिए इनके ऐश्वर्य के रूप नहीं है, इनकी कौन सा रूप है? इनकी महाभाव स्वरूप है। ब्रज कथाओं को सुनकर ही, ब्रज लीलाओं को श्रवण करके ही उनकी ये रूप प्रकट हुई है। इसलिए हमने नहीं सोचना चाहिए कि जगन्नाथ जी ने ऐसे रूप में जो बैठे हैं ये अपने ऐश्वर्य भाव को प्रकट कर रहे हैं, ये ऐश्वर्य भाव को प्रकट नहीं कर रहे। माधुर जी लीलाओं को श्रवण करने में तल्लीन है, वृंदावन की कथाओं को, वृंदावन के ब्रज की लीलाओं को श्रवण करके ही उनकी ऐसे अद्भुत रूप की प्राकट्य हुई है। इसलिए महाम बधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखर है, नील पर्वत, उसको नील पर्वत कहते हैं। हाँ, तो उसी नील शिखर है, वही शिखर माने पर्वत की ऊपर एकदम अग्रभाग में है, ऊपर में ही मंदिर प्रतिष्ठित है। हम अभी नहीं देख पाते, मैंने हम लगता कि अरे क्या मंदिर, ये थोड़ी पहाड़ को ही है। लेकिन स्कंद पुराण में ऐसे व अन्य शास्त्र में, पद्म पुराण सब में वर्णन है कि नील पर्वत है, वहाँ नील पर्वत के ऊपर नील माधव रहते थे। जगन्नाथ जी पहले किस रूप में थे वहाँ पर? जहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर आज है, जहाँ पर रत्न वेदी पर बैठे हुए जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी, वहीं पर पहले नील माधव वहाँ पर विराजमान करते थे। जैसे ही ब्रह्मा जी के परमायु के पहला 50 साल, ब्रह्मा जी की परमायु 100 साल के पहला 50 साल नील माधव के रूप में वहीं पर भगवान विराजमान रहते हैं। अभी ब्रह्मा जी की जो है उनके 51 साल प्रारंभ होने के कारण अभी वो नील, इनको महाराज इंद्रदेवन को माध्यम बनाकर इसी रूप में प्रकट हुए, अपने प्रिय भक्त नारद जी को जो प्रतिश्रुति दिए हैं, तो उसी प्रतिश्रुति को पूर्ण करने के लिए अभी वो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी के रूप में बैठे हुए हैं। हाँ, यदि वो कोई सोचते हैं कि ये इनके ऐश्वर्य, लेकिन प्रकृत में इनके ऐश्वर्य रूप नहीं है, इनकी महाभाव रूप का पराकाष्ठा है, अर्थात माधुर्य लीलाओं को स्मरण करते करते उनकी ऐसे ही रूप प्रकट हुई है। वृंदावन की लीलाओं को स्मरण श्रवण करके ही उसी भाव को अंगीकार करके ही इनकी ऐसे ही रूप प्रकट हुई है। तो इसलिए महामध्य हे जगन्नाथ स्वामी, मैं आपकी उसी रूप को दर्शन करना चाहता हूँ जिस रूप में आपने वृंदावन की लीलाओं को स्मरण किया है। इस रूप में भगवान ने ऐसे रूप उनके प्रकट हुई क्योंकि वृंदावन की लीलाओं को श्रवण करते हुए आपने इन लीलाओं को जो सुन रहे थे माता रोहिणी की मुखारविंद से, तो उस समय ये दोनों आपके साथ थे। कौन? बड़े भाई बलराम भी थे और छोटे बहन सुभद्राज भी थी। इसलिए हे जगन्नाथ, हमें उसी रूप मुझे दर्शन दीजिए, मेरे आंख के सामने आपकी इसी दिव्य रूप, ये महाभाव स्वरूप मेरे नयन के सामने आप मुझे दर्शन प्रदान करें, इसी रूप में मुझे आप दर्शन प्रदान करें। इसलिए कहते कि तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि आम ये कंट्राडिक्शन नहीं है। पहला श्लोक में जो कहे कि वृंदावन में सदा निवास करते हैं, निवा वृंदावन की जो सदा श्रीमद वृंदावन अवसति लीला परिचय, जो सदा वृंदावन में ही निवास करते हैं, वृंदावन परित्यज्यंग पादम एकं न गच्छति, जो वृंदावन को छोड़ के एक पैर भी आगे रखने वाले नहीं है, जो सदा वृंदावन बिहारी के रूप में वृंदावन चंद्र के रूप में जो वृंदावन में रहने वाले हैं, वो फिर इधर महामद इस तरीके से आ गए हैं, ये फिर आकर समुद्र के किनारे महासमुद्र के किनारे दक्षिण समुद्र के किनारे तो नील पर्वत के ऊपर रत्न वेदी पर कैसे विराजमान हो गए अपने भाई और बहन के साथ में। कभी कभी हम सोचते हैं कंट्राडिक्शन हो सकता है, ये कैसा होता है, लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि साधारणता में ये तीनों धाम तीनों क्षेत्र को लीलास्थली को वृंदावन को तथा नवदीप धाम तथा श्रीक्षेत्र व पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी को अभिन्न माना जाता है। जिन तीनों स्थान में चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी लीलाओं को प्रकट किए हैं, तो इसी भाव से हमें जगन्नाथ जी को दर्शन करना चाहिए। हम नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर वो बैठे हुए रत्न वेदी के पर हैं तो ये कृष्ण नहीं है और कोई है, हैं कृष्ण नहीं, क्योंकि साधारणता में क्या देख रहे हैं, उनके हाथ में शंख और चक्र चिन्ह है। जगन्नाथ जी के हाथ में क्या चिन्ह है? शंख चक्र। बलराम के हाथ में हैं हल मुसल। प्रकृति में गदा वृंदावन में जगन्नाथ ने बलराम जी धारण नहीं किए। बलराम जी कहाँ पर धारण किए गदा? गदा वो द्वारका में धारण किए हैं, द्वारका में उनके हाथ से गदा रहता था। वृंदावन में बलराम केवल धारण करते थे हल और मुसल, हैं खेती कुछ जमीन को कर्षण करना और मुसल में इसको समान करना है, इसको पिटाई करके उसको स्थान को समान करना। ये हमारे हृदय को भी समान करते हैं, हमारे हृदय के क्षेत्र को हैं वो अपने लंगल के द्वारा चसते हैं। कौन? बलराम जी, यही आदि गुरु है हैं। ये हमारे अंतकरण में जितनी अनर्थ हैं इसको समाप्त करने वाले हैं, इसको हल में चसते फिर इसको पिटाई करके भी पूरे समान कर देते हैं, सभी प्रकार के अनर्थ को समाप्त करते हैं जहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान कर सकते हैं। तो इसलिए ये श्लोक प्रकृति में पूर्ववर्ती श्लोक का विरोधाभास नहीं है। हमें ऐसे ही जानना चाहिए कि ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी के जो रूप है, ये इनके महाभाव स्वरूप है, वही कृष्ण बलराम सुभद्रा महारानी के महाभाव स्वरूप है, जो इनकी ब्रज कथाओं को श्रवण करके ही ये भाव ये अद्भुत रूप प्रकट हुई थी। तो इसी भाव से हम इनको दर्शन करना चाहिए, जगन्नाथ बलराम को सुभद्रा को देखकर हमें ऐसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको कई लोग कई प्रकार कहते हैं। कोई कहते कि जैसे मैं कहा कि उड़ीसा में कुछ लोग कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं, बलराम जी को कहते कि ये कौन महेश है और विष्णु है कौन जगन्नाथ, और बीच में बैठने वाले सुभद्रा कौन है? ब्रह्मा है। कुछ लोग कहते कि नहीं नहीं ये तो राम लक्ष्मण सीता है, ऐसे रूप में सजाया भी जाता कभी कभी है। कोई कहते नहीं ये कौन है, कुछ लोग के और ये जोग मैंने कहते कि ये देवी है, सम बीच में बैठी है और ये दोनों साइड में जो बैठे हुए हैं वही कहते जगन्नाथ जी को काला भैरव है। कई रूप में लोग अपना स्पेकुलेशन करके ही जगन्नाथ जी को देखते हैं, बात जगन्नाथ सोचते हैं, क्योंकि इनके तो हाथ तो आधा है, पैर है नहीं, आँख बड़े बड़े हैं इस रूप को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं, कौन ये है? तो इसलिए जगन्नाथ अष्टम अष्टकम के माध्यम से जिसको आदि शंकराचार्य ने दिग्दर्शन किया है हमको, उसी भावधारा में हम समझ सकते हैं जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किए हैं। इस जगन्नाथ अष्टकम को गौरांग महाप्रभु भी गाया करते थे, लेकिन उन्होंने जब दी ऐसे यदि ये ऐश्वर्य भाव की मूर्ति होता फिर महाप्रभु इसको नहीं गाते हैं। महाप्रभु सदा किसको देखना चाहते हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के एकमात्र आराध्य देव, बा स्वयं तो कृष्ण ही थे, लेकिन फिर भी इसी गौरा ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का ही भक्ति केवल उन्होंने सिखाया। इन्होंने कभी ऐश्वर्य मूर्ति को भक्ति करना नहीं कह बा हमको सिखाया नहीं। महाप्रभु ने सदा भगवान की माधुर्य लीला को राधा भाव से भावित होकर उनकी माधुर्य लीलाओं का आस्वादन करते थे। इसलिए यहाँ पर जब गौरांग महाप्रभु स्वयं श्लोक को पाठ करते थे, महाम बोधेस्तिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, तो ये ऐश्वर्य भाव से नहीं देखते थे हैं? वो जब भी देखते थे इनको ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के साथ रूप में देखते थे। कभी कभी प्रकृति स्थल तो कभी कभी इनको जैसे बलभद्र सुभद्रा के साथ में दर्शन होता था, तो फिर वो स्मरण होता था रोहिणी माता की कथा को सुनकर जो महाभाव की प्राकट्य हुआ था कि महाराज इंद्रदीप ने जब ये दारू ब्रह्म को प्राप्त करके ही समुद्र से इनके विग्रह के रूप में निर्माण किए, निर्माण प्रारंभ किए थे, जो प्रारंभ से जो सब शिल्पी आ रहे थे तो वो तो कोई इसको उसमें अपने हथियार को चालन नहीं कर पाया, तो उनके हथियार ही सब तोड़ जाते थे। बाद में भगवान की प्रेरणा से जब स्वयं जगन्नाथ जी की प्रेरणा से जब विश्वकर्मा स्वयं आए, बस कई कहते कि जगन्नाथ ही स्वयं आए थे ब्राह्मण रूप धारण करके ही आकर महाराज इंद्रदम्न को कहे कि मैं ये विग्रहों को 21 दिन के अंदर में निर्माण करूँगा, लेकिन मुझे एकांत कक्षा चाहिए और उस मुझे कोई किसी भी प्रकार के मुझे किसी प्रकार के बाधा जैसे प्राप्त न हो। उस कमरे के समस्त द्वार तथा उनके जो बंद रहेंगे, लेकिन मैं अकेले ही, मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, मेरे खाना पीना चिंतन आपको नहीं करना, लेकिन 21 दिन मुझे समय देना, 21 दिन के अंदर निर्माण करूँगा। लेकिन जब 15 दिन 2 सप्ताह चला गया और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया, तभी तो महाराज इंद्रदम्न के रानी गुंडीचा देवी ने कहे कि लगता कि ब्राह्मण अंदर में मर गया है, उसके समाप्त हो चुका है, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। 15 दिन कोई बिना खाए पीना बिना पिए कैसे रह सकता? हम सोचते हैं कि जो साधारण देख रहे हैं, कोई डॉक्टर लोग भी बोलता है कि इसको पानी भी नहीं न दिया जाए, खाना भी न दिया जाए, व्यक्ति कितना दिन से जी के रहेगा, कितनी घंटा रह सकता बिना पानी बिना खाना से, कितना दिन रहेगा? 3 दिन रह सकते, 3 दिन 3 रात, लेकिन ये 15 दिन बीत गया। तो इसलिए गुंडीचा देवी ने कहे कि अब आवाज भी नहीं आ रहा और समाप्त हो गया अंदर में, खोलो दर्जा। यदि वो राजा ने, सूर्यवंशी राजा थे महाराज इंद्रदीप ने भी, सूर्यवंशी राजा थे, तो उन्होंने कहे कि नहीं, ये ब्रह्मा जी की परंपरा से 25वीं पीढ़ी में आते थे, 25वीं पीढ़ी के राजा थे, तो ब्रह्मा से स्वयंभू मनु फिर इक्ष्वाकु आदि इसी वंश में ये आए थे। तो ये कहे कि नहीं नहीं मैं खोल नहीं सकता, प्रतिश्रुति दिया है, कहते ना रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वचन न जाई। मंत्री भी कहे, उनके विद्यापति कहे कि नहीं खोलना, प्रतिश्रुति दिए, वचन को रक्षा करो। लेकिन जब रानी थे बहुत जोर से उद्विग्न होकर चिल्लाने लगे, फिर किसकी बात रहेगी? राजा महाराज इंद्रदीप ने विचलित होकर रानी के वचन में अपने सैनिकों के माध्यम से द्वारजे को बलपूर्वक खोल दी। खोल दिए तो जो मूर्ति देखे ये बैठे हैं, जैसे जगन्नाथ बलराम सुभद्राज देख रहे हैं उसी रूप में बैठे हुए, पैर है नहीं, हाथ अधा है, आंख बड़े बड़े, ऐसे रूप देखकर मंत्री तो बहुत चिल्लाने, मंत्री कहे कि विद्यापति कहे कि देखिए राजा, आपने प्रतिश्रुति नहीं रखे इसलिए भगवान अधूरा रह गए हैं। लेकिन राजा ने फिर संकल्प लिए कि मैं इतनी बड़ी अपराधी बना तो मैं जीवन धारण नहीं करूंगा हैं। तो उन्होंने कुश सज्जा, कुश घास की सज्जा में शयन करके आहार तथा जल त्याग करके ही, अन्न जल त्याग करके ही पड़े रहे, क्योंकि ऐसे ही मैं उपवास करते हुए भगवान के नाम लेते हुए शरीर त्याग दूंगा। लेकिन ऐसे जो राजा के संकल्प को जानते हुए शून्यवाणी, शून्य से भगवान ने कहे कि देखो राजा, दुखी मत हो, मेरे इच्छा के बिना कोई भी कार्य संसार में संपन्न नहीं होता है। तुम इसको मेरा अधूरा मूर्ति मत सोचो, ये मेरा अधूरा मूर्ति नहीं है, ये मेरा महाभाव स्वरूप है। मैंने मेरे भक्त प्रहलाद ने, सॉरी मेरे भक्त नारद मुनि को जो प्रतिश्रुति दिया था कि मैं इसी रूप में ये धरती पर कहीं ना कहीं पूजा प्राप्त करूंगा, तो उसी वचन को, नारद की मुनि की वचन को पूर्ण करने के लिए ये इसी रूप में मैं नीलाचल क्षेत्र में पूजा प्राप्त करना चाहता हूँ आपको माध्यम बनाकर। क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रथम प्रारब्ध, प्रथम 50 साल समाप्त हो चुका है, द्वितीय प्रारब्ध आरंभ हो गया, इसलिए मैं और नीलमाधव के रूप में नहीं पूजा प्राप्त करूंगा, अभी मैं इसी रूप में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी के रूप में, ये तीनों और सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति है, इसी रूप में मैं हम पूजा प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। इसलिए आप दुखी मत हो, इसी रूप में मुझे प्रतिष्ठित कर दो। इसलिए हमें रहस्य को जानते हुए इस श्लोक का समझना चाहिए कि जो महासमुद्र के किनारे जो कनक उज्ज्वल नीलाचल क्षेत्र में जो रत्न वेदी पर बैठे हुए जो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, ये उनकी ऐश्वर्य के मूर्ति नहीं है, वा कोई कितने प्रकार के लोग कई प्रकार के सोचते उसी रूप में नहीं है, ये वही कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी जिन्होंने द्वारका में थे और माता रोहिणी की मुखारबिंद से ब्रज कथाओं को श्रवण करके ही तो इनको ये रूप, ये महाभाव स्वरूप प्रकट हुआ। हम उन्हीं को ही दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी को ये महाभाव स्वरूप को ही दर्शन कर रहे हैं। इसी रूप में हम इसको समझना चाहिए। इसके अगले श्लोक फिर है, चौथा श्लोक है, कृपा पारावार सजल जल श्रेणी रुचिर, रमा बाणी रामा स्फुरद अमल पंके रुह मुखई, सुरेन्द्र ईराराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरित, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जल दश्रेणी रुचिर, रमा बाणी रामा स्फुरात्मल पंके रुह मुखई, सुरेन्द्र ईराराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरित, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सबसे पहला शब्द कृपा पारावार, पारावार का अर्थ क्या, समुद्र। तो जगन्नाथ जी जो कृपा की सागर है, जो दया की सागर है, कृपा पारावार वो दया की सागर है, वा कृपा की सागर है, और सजल कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिर, सजल जलद किसको कहते हैं, बादल, जिसमें जल में भरा हुआ बादल, ऐसे बादल सजल जलद, नहीं बादल पूरा जल में भरा हुआ, जो जल में भरा हुआ बादल उसका कलर कैसे होता है, उसकी कलर कैसे नवघन है, नवघन नया बादल जो आता आकाश में और पानी में भरा हुआ बादल, जिस बादल में पानी नहीं वो सफेद देखेगा, जिसमें पानी भरा हुआ है पर पानी में भरा हुआ बादल कैसे देखता है, हैं थोड़ा सा है काला और नीला मिश्रित है, पूरे काला पूरे नीला नहीं है, लेकिन नीला तो आकाश दिखता है। बादल में भरा ने जो पानी में भरा हुआ बादल श्याम नव घन श्याम। तो इसी प्रकार कहते कि आप ये प्रभु आप कृपा के समुद्र है और आपके स्वरूप आपके शरीर की कलर कैसे आपके दिखाई पड़ते हो ना, जैसे जल में भरा हुआ बादल नव घन श्याम, इसी रूप में आपकी शोभा है। जिन आपकी अंग कांति इसी रूप में है, आपके अंग आपके शरीर के जो अंग कांति है ये सजल जलद नव घन श्याम आपके शरीर के कांति है और आप इनके सबके द्वारा पूजित पूजा प्राप्त करते। जो आपके सेवक है विशेष रूप में ये भी आपकी पूजा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। कौन? रमा वाणी। रमा कौन है? लक्ष्मी जी। वाणी सरस्वती है, सर बाग देवी है सरस्वती, रमा वाणी। ये आप इनके द्वारा भी पूजा प्राप्त करते हैं। जो लक्ष्मी तथा सरस्वती के साथ भी जो विहार करते हैं व जिनके सेवा को जो स्वीकार करते हैं, रमा वाणी रमा। और आपके मुख कमल कैसे हैं ना, स्फुरत अमल पंके रूह मुखई, पंक से ही जन्म लेता है कौन? कमल। जो स्फुरत जो कमल पूरा खुले हुए खिले हुए कमल के समान आपकी मुख कमल आपके मुख की शोभा है। आपकी बदन भी बदन को भी कमल कहा जाता है, भगवान की मुख कमल को भी हम कहते हैं, मुखारविंद को भी कहे हैं मुखारविंद बा, इसको भी कमल कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो आपकी जो मुख कमल है ये खुले हुआ किसी प्रकार की दोष से रहित है, अमल किसी प्रकार के मल से रहित जो अत्यंत शोभनीय प्रस्फुटित कमल के समान आपकी मुखारविंद है, ये शोभा प्राप्त करता है। और आप विशेष रूप में लक्ष्मी की द्वारा तथा सरस्वती की द्वारा भी सेवित है, इनकी द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं व इनको भी विहार कर इनके साथ भी विहार करने वाले हों। और जो केवल ये दोनों नहीं, जो सकल सुरेंद्र ही आराध्य, सुरेंद्र आदि अन्य देवताओं के द्वारा भी आप आराध्य हो। सुरेंद्र कौन है? सुरों की इंद्र, सुरों की राजा, देवताओं की राजा इंद्र तथा अन्य देवताओं के द्वारा भी आप आराध्य हो। और आपकी कीर्ति को श्रुति शास्त्र में भी आपकी महिमा की गायन की गई है। जो समस्त देवगण जिनको आराध्य करते हैं बाद देवताओं की आप एकमात्र धन हो। एवं आप वेद पुराण तंत्रादि शास्त्र ये जितने भी सब श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र इनकी द्वारा भी आपके चरित्र की गान की जा रही है। ये सभी श्रुति स्मृति शास्त्र के माध्यम से वेदों पुराण और उपनिषद तंत्र शास्त्र आदि सभी में आपके ही गुणगान की गई है। वही प्रभु जगन्नाथ जिनकी गुणगान ये सभी शास्त्र में किए गई है, ऐसे ही प्रभु जगन्नाथ जी मेरे नयन पथगामी हो, ऐसे प्रभु का हम दर्शन करना चाहता हूँ। वही प्रभु सदा मेरे नयन के पथगामी, मेरे नाक के सामने मुझे दर्शन देते रहे, इसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। जो कृपा के सागर है, जगन्नाथ जी कृपा के सागर है। कभी कभी प्रश्न आता है भाई जगन्नाथ जो है ये राम कहते हैं जगन्नाथ, ये जगन्नाथ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की मुख्य नाम या गौण नाम है? कभी कभी कहते हैं ना भगवान के नामों की कुछ मुख्य नाम है कुछ गौण नाम है, जिन नामों के माध्यम से भगवान की लीलाओं की विशेष रूप में प्रकट होता है उनकी, तो उन लीला उन नाम को मुख्य नाम माना जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान कुछ मुख्य नाम कुछ गौण नाम बा हरिनामाष्टकम की भी वर्णन की जा रही रूप गोस्वामी के द्वारा, जिनमें भगवान की ब्रजलीलाओं को वर्णन की गई जिन नामों में जसोदानंदन श्याम सुंदर गोविंद गोवर्धनधारी गिरिधारी ये सब नाम भगवान के मुख्य नाम है जो भगवान की लीलाओं के साथ संबंधित है। और कुछ नाम जो केवल उनके कुछ उनकी निरस निराकार स्वरूप को कुछ प्रकट करता है, सर्वव्यापी सर्वाराध्य बा चैतन्य परम ब्रह्म ऐसे ही नाम सब, इसको गौण नाम कहा जाता है। तो जगन्नाथ जो हम पुकारते, जगन्नाथ को कहते कि हमारे नयन के पथगामी हो, ये जगन्नाथ जो नाम है ये कैसा नाम है, मुख्य नाम या गौण नाम है? हम कहते ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, ये जगन्नाथ जी हमारे आंख के सामने आए बा हमें दर्शन दें। तो जगन्नाथ का जो हम पुकार रहे हैं जगन्नाथ हमारे नयन पथगामी हो, तो जगन्नाथ पुकारना ये क्या उनके गौण नाम की लड़ा ना मुख्य नाम है, ऐसे उसके अर्थ क्या होता? जगन्नाथ का जगत के नाथ है, जो संपूर्ण जगत के नाथ है। ऐसे बाह्य दृष्टि में हम देखते कि ये ऐसे ही प्रतीत हो रहा, कैसे गौण नाम की जैसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये केवल जगन्नाथ के नहीं वैभव को प्रकट करता है, ये जगत के नाथ है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, ये उनके वैभव बा उनके ऐश्वर्य की प्रकट कर रहा है, कोई तिलड़ा को ऐसे प्रकट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी जगन्नाथ रूप में इनको फुकारी कौन फुकारती थी? जब कुरुक्षेत्र में राधारणी ने देखी है रथ के ऊपर किनको, भगवान श्री कृष्ण को जब देखी तो उस समय उन्होंने इनको व्यंगात्मक रूप से कही थी। क्या कही थी? आप तो पार्थसारथी बन गए हो, आप तो पार्थसारथी हो, जगन्नाथ हो, अशेष कोटि के मालिक हो, द्वारकाधीश हो, हम जैसे गांव की लड़कियों को कैसे आपको याद आएगा है? हम तो सब गांव की लड़की है, ब्रज में रहने वाले ब्रजवाड़ा है, भोले भाली गांव की लड़कियों को आप कैसे याद करोगे? इसे व्यंग्यात्मक रूप में राधारानी इसे पुकारते, जैसे हमारा दिल्ली में विग्रह है राधा पार्थ सारथी। कोई लोग कहते भाई ये प्रभुपा जी ऐसे कैसे नाम रखा, राधा पार्थ सारथी कोई दूसरा नहीं रखा नाम, कौन रखा? श्रील प्रभुपा जी ने नाम रखे राधा पार्थ सारथी। ये व्यंग्यात्मक रूप में राधारानी ने इसे कही पुकारी है, व्यंग्यात्मक रूप में पार्थ सारथी, आप तो पार्थ सारथी बन गए हो, ऐश्वर्य जी मैंने आप तो जगन्नाथ बन गए हो, जगत के नाथ बने हो, द्वारकाधीश बन गए हो, और हमको कैसे याद रखोगे? हम गांव की जो रहने वाले लड़कियां हैं, हमको कैसे याद होगा? तो इसलिए ये नाम व्यंगात्मक रूप में राधारानी ने पुकारी जगन्नाथ जी को ऐसे कहकर, इसलिए हम इसको जो उच्चारण करने वाला के ऊपर निर्भर करता है वो किसी भाव से इनको उच्चारण करता है। यदि हम इनको ऐसे देखते कि वो जगत के नाथ है, जगत के मालिक है, जो समस्त देवताओं के द्वारा पूजा प्राप्त करते हैं, तो फिर तो हम इनको कह से गौण नाम हो सकता है। लेकिन जब हम इनको इस रूप में देखते हैं कि ये जगन्नाथ के नाम गोपियां तथा राधारानी के द्वारा व्यंगात्मक रूप में उच्चारण की गई है, इन्होंने को ऐसा ही व्यंगात्मक रूप में इनको कहते थे, क्या आप तो इतनी महान मन गए, आपको कहाँ याद रखोगे, तो इस रूप में फिर वो गौण नाम नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की गौण नाम है, हमें कृष्ण कहना और जगन्नाथ कहने में कुछ, हमें कृष्ण कहने से हमको अधिक फल अधिक हमको भगवान को प्रसन्न का नाम कर सकते, या जगन्नाथ कहने से प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए वासुदेव घोष ने कहे थे कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वो जो गौरंग है वही कृष्ण है वही जगन्नाथ है। इसलिए हम जगन्नाथ के पुकारने के समय में भी राधारानी को याद कर कुरुक्षेत्र की उस दृश्य को स्मरण कर सकते हैं, जहाँ पर रथ को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को हम जब मनाते हैं उसको राधारानी कौन खींच, रथ यात्रा उत्सव को रस्सी को कौन खींचा, दोनों साइड में रस्सी बांध कर खींचे, क्योंकि वो तो घोड़े जोते हुए थे रथ में। लेकिन ये जब राधारानी और गोपबाला के इनको देखे हैं तो इन्होंने प्रेम में बिहोड़ होकर उस रथ के रथ में जो घोड़े को सब खोल दी, खोल के उनके दोनों साइड में रस्सी बांध दी, रस्सी बांध कर एक साइड में कौन खींचा, सारे ग्वाल बाल हैं गोप बालक एक साइड रस्सी को पकड़े और दूसरे साइड में गोपियां पकड़ी हैं, फिर रथ को खींचने लगे। क्या रथ उस समय आ गया था वृंदावन? कहते कि हम जो रथ यात्रा मनाते हैं कि खींच की कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन, तो वृंदावन लेके गए थे नहीं समर, क्योंकि आगे काल इसको चर्चा करें। तो वृंदावन लेने में समर्थ नहीं होते, जो भगवान ने खाली इनको बहुत बहाना करके इनको हैं समझे, बोले चिंता मत करो और दो चार राक्षस बचे हुए हैं उनको से मारने के बाद बहुत जल्दी वृंदावन में आ जाऊंगा है, इनको सांत्वना केवल दे दिए थे। एक ही गोपियां आप लोग मेरी इतनी भक्ति किए हो, मैं तो सदा सदा के लिए आपकी ऋणी हूँ, आपकी ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ, ऐसे कहकर भगवान ने थोड़ा उनको सांत्वना देकर भेज दिए थे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने आए थे जब इन्होंने दंतवक्र को वध किए जाकर दतिया गांव में, ब्रज में ही दंतवक्र को वध किए थे, दतिया गांव है वहाँ दंतवक्र को वध करने के बाद फिर भगवान ने यमुना को पार करके ही वृंदावन में प्रवेश किए थे। तो उस समय गांव आज भी है हाँ, वो गांव आयोरे, ये गांव है आयोरे। ब्रजवासी लोगों ने जब देखे थे दंतवक्र को वध करने के बाद भगवान ने स्वयं आए, जो राजभेष तो था उसको से उतार के क्षत्रिय वेश शासन ग्वाल वाल की भेष धारण करके यमुना को क्रश कर रहे थे। ब्रजवासी लोग देख लिया, सब लोग बहुत प्रेम से भाई बोले आयो रे आ गया है कृष्ण, आ गया है हमारे लाला, आ गया है आयो रे। आज भी वो गांव के नाम आयो रे हैं, पुकारे थे। लेकिन इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो जगन्नाथ को जो दर्शन करते हैं, जगन्नाथ के नाम को पुकारते हैं, हम इनको इसी रूप में जानना चाहिए। जगन्नाथ जी कि ऐश्वर्य भाव से का भाव का, ये ऐश्वर्य भाव की भगवान नहीं है। यदि ये कुछ लोग सोचते हैं, जो सोचते हैं इनको ऐसे हैं, इसी रूप में वो उनको दर्शन देते हैं, ये सब इनको पूजा करते। सुरेंद्र ही आराध्य, सुरेंद्र मान देवता लोग ने ऐसे ऐश्वर्य भाव से इनको देखते हैं। किनको? क्योंकि वो जगन्नाथ के रूप में देखते कि इनकी इनको दर्शन करके वो सब अपने अपने शासन का अपने अपने कार्य में जाते हैं, प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं, इसलिए देवताओं की दृष्टि में वो ऐश्वर्य की मूर्ति है, वो जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। इसलिए सुरेंद्र आई आराध्य, सुरेंद्र आदि देवताओं की द्वारा आराध्य है, और जिनकी गुणगान सारे श्रुति शास्त्र में की गई है, श्रुति स्मृति आदि समस्त शास्त्र में पुराणों में जिनकी गुणगान की गई है। लेकिन जो विशेष रूप में रमा और वाणी, रमा सरस्वती और वाणी सरस्वती और लक्ष्मी की द्वारा जो सेवित हैं, तो भगवान कृपा की पारावार है, ये कृपा के सागर है। कृपा पारावार सजल जल, और उनके शरीर का कांति सजल जल है, नवघन श्याम, इसी रूप में जगन्नाथ जी है। और लेकिन भक्तों के लिए, भक्त लोग ने इसी ऐश्वर्य मूर्ति के रूप में इनको नहीं देख रहे हैं। भक्त लोग कैसे देखते हैं इनको? भक्तों के भाव जैसे हैं, भगवान इसी रूप में इनको दर्शन भी देते हैं। इसलिए यदि वो ये कृपा के सागर हैं और इनके शरीर का कांति सजल जलत है, नवघन श्याम है, लेकिन फिर भी ये रमा वाणी आदि सरस्वती और लक्ष्मी की द्वारा भी सेवित है, और इनके मुख कमल खिले हुए कमल के समान अति शोभा प्राप्त करता है, और इनको सुरेंद्र आदि देवताएं हैं सारे देवगण श्रुति शास्त्र की स्तुतियों के माध्यम से जिनकी वंदना करते हैं, वो जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथगामी हो। जो आज और एक श्लोक जो पढ़ेंगे, रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदं उपाकर्ण्य सदय, दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सदय, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदं उपाकर्ण्य सदय, दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सदय,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदय। दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सदयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओ जगन्नाथ मेरे नयन पथगामी हो, जो रथारूढ़ है, जो रथ की पर बैठे हुए हैं, जो रथ की पर बैठे हुए जगन्नाथ, रथारूढ़ गच्छन, केवल बैठे नहीं हुए रथ में, चल रहे हैं, जिनकी जो रथ चलायमान रथ, रथ के ऊपर बैठे, रथ भी चल रहा है। रथारूढ़ गच्छन, कहाँ जा रहे हैं रथ में बैठकर? रथ में बैठकर जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं? वहां देखते ही जगन्नाथपुरी में जो रथ प्रारंभ होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में, तो जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर कहाँ जाते हैं? नीलाचल छोड़कर जहां पर रहते हैं उस पर्वत नीलाचल कहते हैं, नीलाचल क्षेत्र से वो सुंदराचल में जाते हैं, अर्थात गुंडीचा मंदिर से कहां जा रहे हैं, सॉरी श्री मंदिर से, मुख्य मंदिर से, श्री मंदिर से वो जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर है? लेकिन कैसे जा रहे हैं? रथारूढ़ गच्छन, रथ के ऊपर बैठकर। उस समय कोई नहीं, आज भी जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है, जो रथ के ऊपर आरूढ़ होकर जो जा रहे हैं, सो अपने श्री मंदिर को त्याग कर व नीलाचल को त्याग कर सुंदराचल में जा रहे हैं। ऐसा नीलाचल में जगन्नाथ जी जो बैठे हुए हैं, जो मुख्य मंदिर में श्री मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में जगन्नाथ जी से पिछले श्लोक कहा कि लक्ष्मी तथा सरस्वती द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं, तो वो जगन्नाथ जी कभी कभी रथ में बैठकर भी और कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ना सुंदराचल में जाते हैं, जिसको हम वृंदावन कहते हैं। ये जगन्नाथ जी वहीं बैठकर एक साथ में तीनों लीलाओं को आस्वादन कर रहे हैं, द्वारका लीला और वृंदावन की लीला तथा वृंदावन मथुरा तथा द्वारका, तीनों लीला को जगन्नाथ जी बैठकर आस्वादन कर रहे हैं। जब मुख्य मंदिर में बैठे हुए हैं वो कौन सा धाम, तब जगन्नाथ सोच रहे कि मैं कहां पर बैठा हूं, द्वारका धाम, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी का मंदिर है, और लक्ष्मी जी उनके लिए रंधन करती हैं बड़े आडंबर के साथ। जगन्नाथ जी वहाँ पर थाट बाट में सेवा प्राप्त करते हैं, 56 भोग 8 बार खाते हैं प्रत्येक 3 घंटे में। महाराज इंद्रदमन ने ऐसा ही उनको प्रतिश्रुति दिया था कि महाराज इंद्रदमन जब इनको स्थापना किए रत्न वेदी पर, तो उन्होंने कहे कि उन्हें कुछ बर मांगो, तो इंद्रदमन ने बर मांगे थे कि आपको आपके हाथ कभी सूखेगा नहीं, आप सब समय खाते रहोगे। इसलिए महाराज इंद्रदमन इनको 8 बार 56 भोग चढ़ाते थे। इसके अलावा जो दर्शनार्थी हो तो जितने वो भी कुछ लेके जाते भेंट चढ़ाने, वो केवल ये नहीं खाते, उन्होंने दासिया बावरी के हाथ के भी नारियल भी खाए हैं, केला भी खाए हैं, कई भक्त कुछ अर्पण करते हैं उसको भी खाते हैं। तभी दूसरे था कि ये जगन्नाथ जी आपकी दर्शन पूरे 24 घंटा से सिर्फ अर्ध प्रहर अर्थात 1.5 घंटे बंद रहेगा, और दिन रात आप सभी को दर्शन देकर ही उद्धार करते रहोगे, सभी के दर्शन है। कहते कि जत्र साक्षा जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपानिधि, स्कंद पुराण में उत्कल खंड में कृपानिधि जगन्नाथ
दर्शन देकर ही बद्ध जीवों को, जंतु का अर्थ बद्ध जीवों को उद्धार करते हैं। ये इंद्रदेव की प्रार्थना थी कि प्रभु आप सदा दर्शन देते रहोगे और सभी को उद्धार करोगे। जगन्नाथ की कोई दर्शन करें या उनकी प्रसाद खाए उसकी उद्धार होता है। बार रथ यात्रा के समय में कोई रस्सी को खींचता है, जगन्नाथ के सामने कोई नाचता है, गाता है, कुछ भी नहीं करता, जगन्नाथ प्रसाद ही खाता है, सभी के ही कल्याण होता है, इसलिए जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में तो रथ में बैठकर एक बार जाते हैं साल में एक बार, आशा वो फिक्स है डेट आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में, और अपने श्री मंदिर से निकालकर फिर वो गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु हमें कहे कि वो वृंदावन है और ये जहाँ रहते जगन्नाथ जी, ये द्वारका है। इसलिए रथारूढ़ गच्छन, जब भगवान जगन्नाथ रथ में बैठ जाते हैं तो उस समय पहले तो उन्होंने सिंहासन से इनको उठा उठा के लेके आते हैं रथ तक, जो कहते हैं पांडी विजय व पांडु विजय कहते, उनको बैठा बैठा के उठा कर ऐसे ही उठा उठा के लेके आते रथ में बैठाते हैं। रथारूढ़ रथ में जब आरूढ़ हो जाते हैं जगन्नाथ, तो फिर भूदेव, भूदेव किनको कहते हैं, ये भू अर्थात पृथ्वी के जिनको देवताओं के माने जाते हैं ब्राह्मण है, जगन्नाथ जी के जो सेवक ब्राह्मण लोग हैं, ये रास्ता में बहुत सुंदर स्तुतियां गा गा कर सुनते हैं, सुनाते हैं। सब वेदों में, वेदों से वैदिक स्तुतियों को उच्चारण करते हुए जब रथ में आरूढ़ होकर जगन्नाथ जी ने जाते हैं, तो रास्ते में ब्राह्मणगण, ब्राह्मण लोग सभी इनकी स्तुतियां गान करते हैं, बहुत सुंदर स्तुतियां, वैदिक स्तुतियां गान करते हैं, और स्तुतियों को श्रवण करके ही जो बड़े प्रसन्न चित्त में बड़े आस्ते आस्ते धीमे गति में, धीमे गति में आगे बढ़ते हैं। स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम उपाकर्ण्य बहुत आग्रह के साथ श्रवण करते हैं उनको, और ये स्तुतियों को श्रवण करके, स्तवों को श्रवण करके जो सदा सदैव हो जाते अर्थात प्रसन्न हो जाते, उनके प्रति दयालु बन जाते हैं, जो सदैव उनके प्रसन्न हो जाते हैं ब्राह्मण के प्रति, जो इनको बहुत सुंदर स्तुतियां गान करके जो श्रवण कराते हैं, जो प्रसन्न होते हैं, जो दया सिंधु है, जो दया के सागर है और सभी के समस्त जगत के बंधु है। भगवान ने गीता में कहते भी है, पांचम अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान त्वमांग शांति रुच्यति, तो इसलिए कहते कि वो दया के सागर है, सारे जगत के बंधु है, और ये विशेष रूप में अखिल जगत के जो बंधु है, और जो समुद्र के प्रति सदैव होकर दया होकर, समुद्र के किनारे किस लिए जगन्नाथ निवास करते हैं, सिंधु सदैव, सिंधु के प्रति, समुद्र के प्रति बड़े सदैव होकर प्रसन्न होकर, समुद्र प्रति के सदैव होकर जो उसकी उपकूल में व समुद्र किनारे जो उनके धाम जो बना हुआ मुख्य मंदिर, समुद्र किनारे ही जो निवास करने वाले हैं, जो सिंधु के किनारे समुद्र के किनारे समुद्र उपकूल में जो विराजमान है, ऐसे प्रभु जगन्नाथ मेरे नयन के पथिक बने व मुझे सदा मेरे नयन पथगामी बने। इसलिए जगन्नाथ जी ने रथ के ऊपर चढ़ के चढ़ते हैं, जगन्नाथ जी जो होते हैं इनकी रथ यात्रा बड़े प्रसिद्ध है, चाहे हम कितनी अन्य अन्य रथ यात्रा भी सब निकलते हैं, आजकल सब शोभा यात्रा है निकालता है, लेकिन जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो विशेष है। ये संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन महोत्सव है, इससे प्राचीन कोई महोत्सव नहीं है, कि जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले भी विराजमान है, नीलमाधव के रूप में रहते हुए धरी है, कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि हुए भगवान के नाभि कमल से, ब्रह्मा जी ने सोचने सृष्टि कार्य को जो भगवान ने इनको दिए, तो ये 84.5 लाख जोनि में सब शरीर को निर्माण करके ही ब्रह्मा जी ने सोचने लगे, इनको तो मैं ये शरीर प्रदान कर दिया और ये जन्म चक्र में भटकते रहेंगे जीवात्मा, इनके उद्धार कैसे होगा, तो इसलिए बड़े चिंतित रह गए ब्रह्मा जी ने, बड़े वैष्णव होने के कारण बड़े चिंतित रहे, इसलिए भगवान ने स्वयं इनको कहे कि ब्रह्मा जी तुम चिंतन कर रहे हो, मेरे से बड़ा ज्यादा चिंता आपको है, सारे जगत के नाथ हूं, सारे जगत के प्राणियों की चिंता मेरे नहीं है, तुम्हारे ज्यादा है, तुम्हारे प्राकट्य के पहले भी मेरा एक धाम है, ये धाम सदा सदा विराजमान है धरा पर, वो है नीलाचल क्षेत्र, पूरी धाम में ये सृष्टि के प्रारंभ से ही मैं वो अनादि काल से ही वो क्षेत्र है, वो सदा सदा के लिए प्रलय प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। मार्कंड मुनि का अनुभव हुआ है, प्रलय जल में भासते भासते वहीं जाकर लगे उसी कल्प उसी कल्प वृक्ष में, आज भी कल्प वृक्ष है जगन्नाथपुरी में, उसी वृक्ष में जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए, जिन्होंने छोटा बालक की गुआ है, छोटा बालक के रूप में एक बट बट वो बट वृक्ष की पत्ता में सोएंगे, छोटा बालक के रूप में अपने अंगूठा को चूसते हुए मार्कंड मुनि इनको दर्शन किए थे उस प्रलय जल में, भासते भासते को ही प्रवेश किया। छोटा बालक था लेकिन वो मुख खुला तो उसी के अंदर में घुस गए वो है, और उसी के अंदर में अशेष कोटि ब्रह्मांड को दर्शन किए। कौन? मार्कंड मुनि है। उसके थल को दिखाई पड़ता तो छोटा सा बच्चा है, माँ जसोदा भी देखिए छोटा लाला है कन्हैया है, लेकिन मुख खुला, मुख खुलते ही माँ जसोदा ने जो अशेष कोटि ब्रह्मांड को दर्शन की थी। तो उसी प्रकार ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा महोत्सव है, ये अन्य किसी भी महोत्सव से सबसे प्राचीन है, क्यों जगन्नाथ जी प्राचीन है, ये पुरातन है, सनातन है, ये सनातन धर्म है और जगन्नाथ जी भी सनातन है, अनादिकाल से वहीं पर प्रतिष्ठित है। ये नहीं कि कलयुग में जगन्नाथ है, अगला युग को सत्ययुग में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जगन्नाथ जी चारों युग में वहाँ विराजमान रहते हैं, सभी समय रहते हैं और सृष्टि के अंत तक भी वहीं रहते हैं, अंत समय में भी उनके धाम नष्ट नहीं होता है, प्रलय जल में ये डूबता नहीं है। तो इसी प्रकार ये जगन्नाथ जिन्होंने इनके रथ यात्रा महोत्सव इसलिए सबसे श्रेष्ठ सबसे प्राचीन है, इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं, जिसको महाराज इंद्रदमन ने लगभग 15,34,00,000 स्कंद पुराण के आधार पर इससे भी पहले ही प्रारंभ कर किए थे सत्ययुग में है। अवश्य जगन्नाथ जी की जगन्नाथ के रूप में रहते हैं, ब्रह्मा जी की परमाई के साथ साथ फिर वो ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते तो फिर उनके दूसरे फिर वही स्थान पर वो किस रूप में प्रकट हो जाते हैं, नीलमाधव के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की 100 साल में 50 साल नीलमाधव, 50 साल जगन्नाथ बलराम सुभद्रा इस रूप में रहते हो। तो इसलिए जगन्नाथ जी कभी कभी रथ यात्रा में रथ पर आरूढ़ होकर और अपने ब्राह्मण भूदेव अर्थात इस पृथ्वी पर जिनको हम देवताओं के समान सम्मान करते ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सुंदर स्तुतियों के गान श्रवण करते करते वैदिक स्तुतियों को श्रवण करते करते जो बड़े प्रसन्न होकर सदैव हो जाते हैं उसे ब्राह्मण के प्रति सदैव होकर बहुत धीमे गति में जो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ दया के सागर हैं, समस्त जगत की बंधु हैं और जो समस्त जगत के कल्याण करने वाले हैं, सकल जगतांग जो सिंधु के और किसी भी पूरी क्षेत्र में रहते हैं और दूसरी जगह में न रहकर वहीं क्यों रहते हैं, इस जगन्नाथपुरी में वो समुद्र किनारे क्यों रहते हैं ना, विशेष कृपा करके ही किसको समुद्र को सिंधु सदैव विशेष दयालु बनकर सदैव होकर जो समुद्र के प्रति विशेष सदैव होकर वो समुद्र किनारे निवास करते हैं नीलाचल क्षेत्र में, नीला पर्वत के ऊपर रत्न वेदी पर विराजमान है जगन्नाथ। वो भी कभी कभी रथारूढ़ हो, कभी कभी रथ यात्रा के महोत्सव भी माध्यम से और सभी बद्ध जीवन को उद्धार कार्य में बा सभी को उद्धार होने में सहायता करते। कुछ लोग जाते नहीं, कुछ लोग मंदिर भी जाते नहीं हैं, टाइम नहीं होता है, बिजनेस बहुत व्यस्त रहते हैं। तो इस प्रकार जो जगन्नाथ जी ने सभी को उद्धार करने के लिए भी कभी को बाहर भी आते हैं, ऐसे तो साधारण रीति है कि ओडिशा में जो कहते कि नहीं जगन्नाथ जी ने अपने मासी बाड़ी जाते उसको मासी बाड़ी भी कहते हैं। गुंडीचा क्षेत्र गुंडीचा मैंने जो गुंडीचा मंदिर है ये गुंडीचा देवी जो इंद्रदेवन महाराज के पत्नी उनके नाम ही गुंडीचा है महारानी, तो उनको कहते कि जगन्नाथ जी के मासी है जगन्नाथ जी मासी, क्योंकि जब जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की सेवा प्रकट हुई ब्रह्मा जी आकर प्रतिष्ठित कर दिए सब लोग बड़े खुशी थे, लेकिन कई लोग गुंडीचा बड़े दुखी थी, महाराज इंद्रदेव की रानी दुखी थी, किस लिए वो सोचती थी कि मेरे लिए भगवान का ऐसा ही अधूरा रूप हो गया, मैंने ही खुलवा दिया कर वो दर्जा को कहकर मेरे कहने पर बार बार और सैनिकों के द्वारा बलपूर्वक दर्जा को खोल दिया और इसीलिए जगन्नाथ ये भगवान के रूप अधूरा रह गया ऐसे सोचकर वो बड़े दुखी रहती थी। लेकिन जगन्नाथ जी ने कहे कि तुम दुखी मत हो, तुम तो तुमको तो मैं मेरे मासी जैसे मानती हूँ, माँ के छोटे बहन जैसे हो तुम भी, क्योंकि मैं तो मेरी स्वइच्छा से ऐसे महाभाव रूप को प्रकट किया हूँ, नारद मुनि को जो वरदान दिया था उसी को रक्षा करने के लिए, और इसी रूप में मैं ऐसे जो जितने भी बद्धजीव है इनको मैं उद्धार करूँगा, ये मेरी भावना है। लेकिन यदि वो इंद्रदिम्न महाराज को मैं कुछ वरदान दिया, इसी प्रकार तुमको भी कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तुम भी कुछ मांगो हैं। इसलिए गुंडीचा देवी को जगन्नाथ जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिए थे कि अवश्य तुम्हारे जहाँ पर गुंडीचा मंदिर है वहाँ गुंडीचा महारानी रहती थी, ऐसे कहा जाता वो भी जगन्नाथ जी के प्राकट्य स्थान है, वहीं पर जगन्नाथ जी की जो शिव विग्रह को वहीं पर प्रकट किया गया था, बाद में उन्हें श्री मंदिर में आए हैं जो, लेकिन वहीं पर प्राकट्य स्थान है। और जब ये महाराज इंद्रदिम्न ने ब्रह्मा जी की निमंत्रण करने के लिए गए थे ब्रह्मलोक में, तो अभी जगन्नाथ जी ने वहीं रहते थे, कहाँ गुंडीचा मंदिर में ही रहते थे, उसी स्थान में रहते थे। इसी को इसीलिए जगन्नाथ जी ने कहते कि वो मेरा जन्मस्थान है, मेरे लीला क्षेत्र है, कई मनोन्तर में वहाँ पर रहा, तुम तो स्वयंभू मनोन्तर में गया था इंद्र को बने बुलाने के लिए, सोरोचिसा मनोन्तर में तुम मुझे प्रतिष्ठित किया, तीन बीच में ये तीन मनोन्तर बीत गया, इसलिए एक मनोन्तर में कितने चतुर्युग जाता है, एकस्तर चतुर्युग है, तो इतनी दीर्घ समय में वहीं पर रहा था और इसलिए उस स्थान मुझे अति प्रिय है, वृंदावन समान उस स्थान मुझे प्रिय है, इसलिए साल में मुझे एक बार वहां ले जाना, ये तो हम तत्व दृष्टि से कहते हैं। लेकिन साधारण तथ्य में जैसे स्कंद पुराण के आधार पर कहते कि वो गुंडीचा देवी को जगन्नाथ जी भी वरदान दिए थे, मैं साल में एक बार आऊंगा तुम्हारे पास, तुम मेरे मासी के समान हो, तुम जैसे चाहते मेरी भक्ति, प्रेम से मुझे कुकिंग करके खिलाना है करना मैं बड़े, तो इसलिए उड़ीसा में इसी प्रकार लोग सोचते कि मासी का घर में जा रहे जगन्नाथ है, इंद्रदिम्न की रानी गुंडीचा के घर में जा रहे हैं, गुंडीचा मंदिर उसको कहते गुंडीचा मंदिर। तो इसे लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम रथ यात्रा के रहस्य को समझते हैं कि जगन्नाथ जी ने अपने जो निज मंदिर श्री मंदिर में बैठते हैं नीला पर्वत के ऊपर रत्न वेदी पर, तो वो सोचते कि मैं द्वारका में हूँ, भाई बहन बलराम सुभद्रा के साथ द्वारका में हूँ सोचते हैं। जब भी इनको पहंडी विजय के माध्यम से रथ के ऊपर लाकर आरूढ़ कर दिया जाता है, मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं रथ के ऊपर विराजमान होते हुए, जगन्नाथ जी सोचते कि मैं कहाँ आ गया, कुरुक्षेत्र की स्मरण होती है, तो कहते कि वो सूर्य ग्रहण के सूर्य पराग के समय में हम जो द्वारका धाम से आए थे, कहाँ कुरुक्षेत्र में पधारे थे, तो उनको सोचते कि हम वहीं आ गए, रथ के ऊपर बैठे हुए सोचते कि हम कुरुक्षेत्र में पधारे, और जब उन देखते कि भक्त लोग इनको रस्सी खींचते थे, विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु जो विराजमान थे, जो महाप्रभु को देखते थे जगन्नाथ जी, सोचते थे कि अभी कौन है मेरे सामने, हैं ये सारे ब्रजवासी आ गए और इनमें राधारानी भी है, चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से भावित होकर रथ को खींचते थे, इसी भाव में भी गीत गाते थे जगन्नाथ जी के सामने। इसलिए जगन्नाथ जी ने सोचते कि जो बड़दांड में आकर रथ के ऊपर बढ़ जाते, सोचते कि मैं कुरुक्षेत्र में हूँ, जब भक्त लोग रस्सी बांधकर खींचने लगते हैं, कहते कि ये मुझे कहाँ ले जाते हैं, मुझे वृंदावन ले चलते हैं, सर जगन्नाथ बड़े खुश प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहते प्रकृत में जगन्नाथ जी के प्राकट्य जब होता है, मैंने जब उनके जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है स्नान पूर्णिमा के दिन, जगन्नाथ जी को महाअभिषेक की जाती है, जगन्नाथ जी का अभिषेक है कोई गंगा जमुना सरस्वती वैसे कोई पवित्र जल दूसरे जगह से लेकर नहीं करा जाता किया जाता, जगन्नाथ मंदिर में ही उत्तर गेट के पास में कुआं है, आज भी है, बंद रहता साल भर बंद रखा जाता, लकड़ी के पूरा फिर साल में एक बार खुलता है वही स्नान पूर्णिमा का दिन। क्योंकि महाराज इंद्रदिम्न को जगन्नाथ जी ने कहे थे कि देखो तुमको कोई मेरे अभिषेक करने के लिए मुझे स्नान कराने के लिए कोई अन्य तीर्थ में जल लाने का आवश्यकता नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है सभी तीर्थ की जल उस कुआं में निवास करते हैं, वो कुआं और उस कुआं की रहस्य किसी को पता नहीं है, लेकिन उसी कुआं की जल केवल मुझे अभिषेक करना, और उस कुआं की जल अन्य किसी काम में उपयोग नहीं करना, बंद रहता साल भर, केवल एक बार खोलता है और उससे पानी लेकर स्वयं सोन जो कि चांदी के बाद सोने के गगरे में पानी लाकर जगन्नाथ जी को अभिषेक करते हैं, हैं? तो इसलिए स्नान पूर्णिमा जब समापन होता है तो इसके बाद जगन्नाथ जी ने बहुत खाते उस दिन, जन्मदिन में बहुत बना खिलाते हैं इनको, हैं? हर दिन जितना खाना खिलाते उससे और ज्यादा बहुत उससे 10 गुना खाना बनाते हैं। खाना बनाए जगन्नाथ जी को बहुत स्नान किए बहुत खाए तो इसलिए क्या होते हैं बीमार हो जाते हैं साधारण सोचते हैं हम, लेकिन भक्तियाँ सरस्वती ठाकुर कहते कि नहीं बीमार हैं, बीमार जब हो जाते हैं तो सोचते हैं तो पर इनकी पत्नी कौन लक्ष्मी ने बहुत सेवा करती है, उसमें नया शादी हुई शादी उत्सव एनिवर्सरी मनाया जाता है लक्ष्मी का भी शादी का एनिवर्सरी जगन्नाथ जी के साथ, और वो बहुत सेवा करती है एकांत में अपने पति को बीमार देखते हुए, और जगन्नाथ जी थोड़ा जब अच्छे हो जाते हैं फिर कहते कि अरे लक्ष्मी से थोड़ा परमिशन मांगते, कहते कि मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ यहाँ बैठे बैठे की बड़ा बोर हो गया, अभी थोड़ा मुझे थोड़ा घूमना है बाहर में, थोड़ा फ्रेश एयर में थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। लक्ष्मी कहते मैं भी चलूंगी, नहीं नहीं तू नहीं कह जाओ, भाई है ना बड़ा भाई है ना कौन बलराम है तो इसलिए तुम नहीं आ सकते तुम रहो ऐसे ऐसे कहकर कहते कि एक दिन सिर्फ मैंने आज जा रहा हूँ काला उपास आऊंगा थोड़ा घूम के फ्रेश होऊंगा इधर उधर घूम के, लेकिन एक दिन कहा कि वो कितना दिन रह जाते हैं नवम दिन में वापस आते जाते एक दिन फिर 7 दिन वहां रहते फिर जाते एक दिन आते जैसे नहीं द्वितीया में निकालते एकादशी में पहुंचते आके तभी तो इसलिए ये रथ यात्रा उस समय रथारूढ़ बात में लक्ष्मी देखता है कि एक दिन कहे थे कहाँ गए एक दिन तो आए नहीं है दूसरे 2 दिन भी 3 दिन 4 दिन वेट करती 5वें दिन में तो बड़े गुस्सा आ जाती लक्ष्मी को ठाठ बाट में निकालती है अपने नौकरी के सब लेकर दासी को लेकर निकालती ढूंढने के लिए कहाँ गए जगन्नाथ जी की पूरा से पुजारियों को सब अरेस्ट कर लेते तो जगन्नाथ जी के सेवक है मुख्य तो पुजारी को अरेस्ट करके कहते कहाँ ले गए हो तुम्हारे मालिक कहाँ गया ला के दो है? और इनको पुजारियों को बांध ले जब लक्ष्मी की जो सेवा करने वाले हैं पुजारियों को बांधते हैं जगन्नाथ की पुजारी को गमछप उनके गले में कपड़ा डाल के उनको खींचते कहाँ ले गया जगन्नाथ को है कहाँ गए तो इसके हरा पंचमी उत्सव मनाया जाता तो उस यहाँ चर्चा नहीं लेकिन इसलिए जगन्नाथ जी ने रथ के ऊपर बैठकर लक्ष्मी से थोड़ा परमिशन लेकर एक दिन के लिए परमिशन लेकर कितने दिन चले जाता 7 दिन 8 दिन 9 दिन 9 दिन में आके पहुँचते हैं लेकिन ये रथ यात्रा जो ऐसे ही जो जगन्नाथ है जो रथ में ऊपर बैठ कर जो इनकी रथ के ऊपर बैठ कर रथ में आरूढ़ होकर जो जो उनकी सेवक पुजारियों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक स्तुतिगान को श्रवण करते हुए जो गुंडीचा मंदिर में के लिए प्रत्यावर्तन करते हैं और जो सिंधु के किनारे समुद्र के किनारे निवास करते हैं विशेष कृपा करके हैं दयापूर्वक दया सिंधुर बंधु सिंधु सद सिंधु के प्रति सदैव होकर जो सारे जगत के कल्याण के लिए जो सब दया के सिंधु है समुद्र है सारे जगत के बंधु है ऐसे जगन्नाथ मेरे नयन के पथगामी हो। लेकिन ये रथ यात्रा के उत्सव को महाप्रभु ने तो हमको बताया इसकी रहस्य क्या है और ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल पुरी में ही होता था पहले और इस रथ यात्रा उत्सव को कौन ले गया पूरे विश्व में कौन लेके गए इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव को पूरे विश्व में आज प्रत्येक शहर में गली गली में ये चलता ये उत्सव मनाया जाता है इसलिए इसके सारे जो ख्याति प्रभुपाद जी को ही मिलना चाहिए पूरा विश्व में जो प्रचार हो रहा है जगन्नाथ जी सब सर्वत्र आज विराजमान हो गए रथारूढ़ गच्छन रथ में बैठ कर हैं बोले तो सिर्फ यहीं से जाते थे बस अपने मुख्य मंदिर से पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते थे बस रथ यात्रा उत्सव लोग लाखों संख्या में जाकर वहीं दर्शन करते थे रथ के ऊपर लेकिन आज हम जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर पूरा विश्व की विश्व भर में दर्शन करते हैं इसीलिए प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव सर्वत्र मनाया जाता है तो इसी प्रकार ये अष्टक में कहा गया कि स्तुति में कहा कि हम उसी जगन्नाथ को दर्शन करना चाहते जो रथ के ऊपर आरूढ़ है कल हम इनको दर्शन करेंगे रथ के ऊपर आरूढ़ अभी तो मंदिर में बैठे हुए बड़े भाई बलराम सुभद्रा के साथ लेकिन कल हम इनको कहाँ दर्शन करेंगे रथ के ऊपर आरूढ़ होते हुए जब रथ के ऊपर जगन्नाथ आरूढ़ होते हैं वो अधिक दयालु बनते हैं, मार्ग पर आ जाते हैं। कोई किसी को भी उनकी नजर किसी के ऊपर नजर डालते तो उसके कल्याण ही होता है। बड़े दया भाव से दयालु बनकर सभी की कल्याण करने के लिए अपने मंदिर छोड़कर बाहर आ जाते हैं। जो लोग उनको दर्शन नहीं करते, मंदिर भी नहीं आते, उनको दर्शन देने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे जगन्नाथ मेरे नयन के पथगामी हो। ठीक है, और काल दो तीन श्लोक नितिन श्लोक और काल सुबह चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा हुआ उसके ऊपर कोई प्रश्न है, इसको प्रश्न और कमेंट्री। कंटिलो में नीलमाधव मंदिर है, हमारे एक भक्त है यहाँ पर पहले रहते थे, कौन है, मुरारी भगवान, उनका घर है कंटिलो है? तो कंटिलो में भी नीलमाधव की मंदिर है आज भी, लेकिन शास्त्र के आधार पर, स्कंध पुराण के आधार पर कंटी माने नीलमाधव वहीं पर थे जहाँ पर अभी जगन्नाथ है, उसी स्थान पर ही ब्रह्मा जी की 50 साल तक नीलमाधव रहते हैं और अंतिम जो 50 साल 51 साल से 100 साल तक वहीं पर जगन्नाथ पर प्रकट होते हैं है? तो इसलिए वो नीलमाधव महानदी के किनारे पर है, लेकिन नीलमाधव महानदी के किनारे पर नहीं है। नीलमाधव की वर्णन की गई वो दक्षिण समुद्र किनारे हैं, दक्षिण समुद्र किनारे वहीं जहाँ पर जगन्नाथ विराजमान है, अभी मुख्य मंदिर है, वहीं पर नीलमाधव भी रहते थे। वहाँ तो महानदी है, महानदी किनारे नहीं कहा गया जगन्नाथ निवास करते हैं। जगन्नाथ जी समुद्र दाएं दक्षिण समुद्र किनारे हैं, महाम्बधे स्थिरे, वहीं पर जगन्नाथ, वहीं पर नीलमाधव, वो एक ही स्थान है। उसी स्थान में अभी जगन्नाथ हैं, ये ब्रह्मा जी की परमायु की समाप्ति के साथ साथ फिर ये जगन्नाथ जी अदृश्य हो जाएंगे, फिर वहाँ पर कौन प्रकट होंगे, नीलमाधव प्रकट होंगे। लेकिन वो स्थान दिव्य है, सदा सदा विराजमान रहता है, किसी भी प्रलय में भी वो स्थान नष्ट नहीं होता है, चाहे नीलमाधव के रूप में रहे या जगन्नाथ के रूप में रहे, ये सदा बद्ध जीवों को उद्धार करते रहते हैं। वहीं पर रहकर कोई भी जाकर उनके दर्शन करता है तो उसकी उद्धार होता है। दर्शन करें बा उनके प्रसाद खाएं किसी भी रूप से उनकी कृपा प्राप्त करता तो उसकी कल्याण होता है। और कोई प्रश्न है? हाँ, सुदर्शन गरुड़ माने सुदर्शन गरुड़ है, जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ है ना, ऐसे कृष्ण लीला में हम देखे कभी, कृष्ण के वृंदावन में लीला में ऐसे कोई देखे, लेकिन यहाँ पर तो जगन्नाथ जी बैठे सामने गरुड़ खम्भ है, जगन्नाथ जी के बाजू में कौन है, सुदर्शन है। सुदर्शन कहाँ रहते हैं, नारायण के हाथ में रहते हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन में कभी सुदर्शन धारण नहीं किए, कभी धारण किए नहीं, वृंदावन में तो अस्त्र शस्त्र किस धारण नहीं किए भगवान ने, केवल खेलते खेलते खेल खेल में आए ऐसे ही सब। नहीं, सुदर्शन उधर आ गए, गरुड़ जी आ गए हमारे वृंदावन में, छठी करा के पास में एक मंदिर है गरुड़ गोविंद मंदिर है, वो दर्शन किए। गरुड़ जी ने भी एक बार देखे, ये ग्वाल वाल खेलने वाला, ये जो भगवान गाय चराने वाला है, ये कौन है, तो उसको बाद में पहचाना ये कृष्ण है, उनको भगवान की लड़ा कई कहानी बड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ तभी। लेकिन सुदर्शन का क्या भूमिका है, वहाँ सुदर्शन भी है साथ में, चतुर्धा मूर्ति का सुदर्शन भी जगन्नाथ जी के सामने साइड में रुके हुए हैं, तो इसलिए हम सोचते कि सुदर्शन ये तो ऐश्वर्य लड़ा है, ऐश्वर्य के धाम है, वैकुंठपुरी है, सुदर्शन है, लेकिन सुदर्शन जब रहते तो फिर वो द्वारकापुरी है, इसलिए उसको हम द्वारकापुरी कहते, तो सुदर्शन बैठे हैं बाजू में। रथ यात्रा उत्सव में जगन्नाथ के पास सुदर्शन नहीं रहते, कहाँ रहते जगह सुदर्शन कहाँ रहते, सुभद्रा जी के रथ में आ जाते हैं, सुदर्शन सुभद्रा के हाथ में रहे, सुदर्शन क्योंकि ये जो जोगमाया देवी हैं, तो सुदर्शन वो उस समय उनके पास रहते, सुदर्शन नहीं रहते, जब रथ के ऊपर जगन्नाथ आते तो वहाँ सुदर्शन नहीं रहते, सुदर्शन सुभद्रा के रथ में रहते हैं। प्रभुपाद जी जो रथ यात्रा उत्सव में कहाँ बैठते थे, कौन सा रथ में बैठते थे, सुभद्रा जी के रथ में बैठते थे, तो इसलिए जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जो आते हो वृंदावन यात्रा करते तो फिर वहाँ सुदर्शन नहीं रहते, वो रथ के ऊपर स्वयं जगन्नाथ जी के साथ सुदर्शन रथ यात्रा रथ के ऊपर नहीं रहते हैं, लेकिन जो द्वारकापुरी में बैठे हुए उधर तो निराचल क्षेत्र में तो वहाँ पर सुदर्शन साथ में रहते हैं, लेकिन द्वारका में सुदर्शन चक्र धारण करते कभी कभी, द्वारकापुरी में वासुदेव कृष्ण कभी कभी दो हाथ कभी कभी चार हाथ हैं, चार हाथ कभी कभी वो सुदर्शन प्रयोग करते हैं, कभी कभी विशेष राक्षस को वध करना तो सुदर्शन धारण कर लेते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी को जो जिसी रूप में देखता है इसी रूप में वो उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, उसको दर्शन देते हैं। कोई इनको नारायण रूप में भी देख सकता है, कोई इनको कृष्ण के रूप में देख सकता है, कोई राम के रूप में, कोई भी जैसे जैसे चिंतन है इसी भाव से जगन्नाथ जी इसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। लेकिन हमें तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव दर्शन के आधार पर हम इनको किस रूप में देखते हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में देखते हैं, लेकिन कोई भिन्नता नहीं है। प्रभुपा जी कहते कि एक सेम व्यक्ति है, कोई ऑफिस में बैठा है तो नारायण, घर में है तो कृष्ण, घर में अपने परिवार के रिलेशन जब रहता है तो उनके साथ प्राय क्लोज रिलेशन है, जिसको कहते हैं राग भक्ति। ब्रज ब्रजवासी सब ब्रज में रहने वाले जो लोग हैं वो कृष्ण की अपना आदमी है, हैं वहाँ पर विधि भक्ति नहीं चलता, बड़े इनफॉर्मेलिटी है, ब्रज में कोई भगवान मानता ही नहीं, उनको भगवान मानता कोई नहीं, ब्रजवासी कृष्ण को ऐसे भगवान भी नहीं मानते हैं, हैं वो अपने प्रेमिक है, अपने सखा है, अपने पुत्र है, इसी भाव से इनके पूजन कर इनको बस संबंध है। जसोदा माया को कोई कन्विंस करेगा तेरे लाला है भगवान, कभी कन्विंस होगी नहीं, हैं जसोदा को कोई कन्विंस नहीं कर सकता ये भगवान है तेरे लाला, नहीं कभी नहीं माने, हैं कहीं लाला ने गोवर्धन धारण किए, अरे क्या क्या तुम बोल रहे हो, देखा नहीं नंद बाबा भी लाठी लगाए थे, उपनंद भी लगाए था, सारे कितने ग्वाल बाल लोग लाठी है, मेरे छोटा सा लाला को कहाँ भगवान बना रहे हो तुम लोग है? है? नंद बाबा ने कहे कि अरे हम जानते हैं इसके बारे में कृष्ण, इसको हम जानते हैं क्या कर, दिन में 50 जो कितना झूठ बोलता है, थोड़ा सा माखन रोटी के लिए रोता है, डेली माखन चोरी करता है, कितनी कंप्लेन उसके नाम में हमारे घर में आता है, वो भगवान है, लेकिन फिर भी ब्रज में भाव अलग है, लेकिन जो द्वारकापुरी में मथुरा में वैकुंठ में फिर वो भगवान के रूप में इनको ऐश्वर्य मूर्ति के रूप में देखते हैं, फिर उनके लिए भगवान है। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, कोई कमेंट्री? हाँ, वो कुआं के बाजू में शीतला देवी की मंदिर है, शीतला देवी सारे रोगों व्याधि के मालिक हैं, शीतला देवी ये डेमीगॉड है, किसके लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं, किसको जो सब क्या कुछ विशेष रूप में जो ये सब क्या करते हैं इसको चिकन पॉक्स वगैरह होता है, शीतला देवी रोगों व्याधि को कोई कोई रोगों व्याधि से मुक्त होने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन ये जोगमाया देवी का ही विस्तार है, साइड में शीतला मंदिर है। ओके, हरे कृष्ण। अब जगन्नाथ अष्टकम नहीं गा पाते क्योंकि समय हो जाता है, कल सुबह देख, कल तो रथ यात्रा, कल सुबह गाएंगे जगन्नाथ अष्टकम, कल से पूरा और 3 श्लोक समाप्त हो जाएगा फिर अष्टकम, ठीक है। हरे कृष्ण। लीला प्रभुपाद की।
हरे कृष्ण। जगन्नाथ अष्टकम के जो आगे के 3 श्लोक हैं उनके ऊपर चर्चा कल सुबह महाराज करेंगे 7:50 से भागवतम क्लास में। अभी सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद हम कृपया प्रसाद लेकर ही प्रस्थान कीजिए। हरे कृष्ण।